ओम शांति। बाबा के इस बेहद फुलवारी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अभी हम सबके बीच ज्ञान गुणों से भरपूर अपनी दिव्यता की चमक फैलाने वाली हमारी आदरणीय नीलम बहन जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। हम सब उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप बचपन से ज्ञान में हैं और ये आपका विशेष सौभाग्य है कि जब 1969 में बाबा अव्यक्त हुए उसी साल आप भी यज्ञ में समर्पित हुई और 1973 से आप विशेष उड़ीसा की सेवा में हैं। उसके पहले आपने बंगाल, बिहार, नेपाल की सेवाएं की और वर्तमान समय अभी आप नवरंगपुर सेवा केंद्र उड़ीसा में 6 जिलों की सेवाओं को संभालते हुए आप बाबा का कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी आप हम सबको फिर से ईश्वरीय जीवन की जो शक्तियां हैं, जो मर्यादाएं हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे। हम सब फिर से उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो मधुबन की धरनी पर हम सभी पधारे हैं। कई तो कई बार आ चुके होंगे, कुछ पहली बार आए होंगे। लेकिन सभी का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि हम सभी बाप दादा के साथ मिलन मनाएंगे। अपने इन चर्म चक्षुओं से उस भगवान को साकार स्वरूप में आते हुए देखेंगे। क्योंकि कहा ही जाता है कि भगवान को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम बच्चे कितने पदम सौभाग्यशाली हैं जो भले ही अपने अपने सेवा केंद्रों पर स्क्रीन के माध्यम से या घरों में टीवी के माध्यम से बाबा को देखते हैं, अपने अपने स्थानों में बाबा मिलन करते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी का आग्रह यही होता है कि हम मधुबन की धरनी पर जाकर के स्वयं इन आंखों से भगवान की उस मूरत को देखकर अपने नैनों को, अपने मन को तृप्त करें। ये सौभाग्य सिर्फ हम सभी को इसी संगम युग पर ही प्राप्त होता है। जब हम अपने को हर प्रकार से संतुष्ट कर पाते हैं, जब हम सभी योग में बैठे थे तो गीत बज रहा था, सोचो भला करो भला। हम यहां से ये मंत्र लेकर के जाएंगे, सोचना और करना। हमारी सोच में बदलाव तभी आता है जब हम ज्यादा से ज्यादा योग करते हैं। जितनी हमारी याद की क्षमता बढ़ती जाती है तो हमारा सोच भी पावरफुल होता जाता है। यह आप सभी अनुभव करते होंगे। करने की कुशलता हमें ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते जाते हैं उतना उतना हमें क्या श्रेष्ठ कार्य करना है, कैसे करना है, उसकी जो सीख है, उसकी जो ताकत है, वो हमें प्राप्त होती जाती है। तो जैसा कि हम सभी का सब्जेक्ट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, इस पढ़ाई का ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो अगर योग के प्रति हमारा विशेष ध्यान होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा समय हम योग में लगाते हैं, अपनी मन बुद्धि को बाबा के साथ लगाते जाते हैं, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी वो चार्ज होती जाती है। ज्ञान समझ है, वो हमें कर्म करने की विधि बतलाता है, हमारे में क्षमता बढ़ाता है, कार्य कुशलता बढ़ाता है, लेकिन आत्मा के अंदर जो पावर आनी चाहिए, जो शक्ति आनी चाहिए, वो हमें योग के माध्यम से ही आता है। इसलिए कहा जाता है योग बल। तो बाबा के साथ, बाबा ने कहा है बच्चे, मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस स्वरूप वाला हूं, जिस कर्तव्य वाला हूं, उस रूप से मुझे यथार्थ जानकर मुझे याद करो। आप में भी वो शक्ति आती जाएगी। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के दो पिन को अगर जब हम प्लग में लगाते हैं तो क्या होता है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो चार्ज होती जाती है और उसी हिसाब से हम उतना समय तक अन्य लोगों से बातें कर सकते हैं। तो चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अपने अंदर आत्मा में इतनी शक्ति भरनी है जो सदा ही वो चार्ज रहे, मन और बुद्धि का जो तार है सदा प्लग के साथ लगा रहे और हम पावरफुल होते रहे। जब मैं ऐसे तो बचपन से ही साकार बाबा मम्मा के समय से ही बाबा के घर में आई, बाबा को देखा, मम्मा को देखा, उनकी योग युक्त अवस्था को देखा, तो मेरा भी इंटरेस्ट योग के प्रति विशेष आ गया और मैं यही कोशिश करती थी, घर में ये नहीं दिखाती थी कि मैं ज्ञान को अंदर अपना रही हूँ, योग को अपने अंदर ला रही हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पुरुषार्थ चलता था कि बाबा के साथ हमारा लिंक सदा रहे, बस हर बात में बाबा 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 ही बुद्धि में रहता था। जब पढ़ाई पढ़ते थे, सुबह उठते थे तो बाबा, पढ़ाई करते थे तो पहले बाबा को कुछ टाइम याद करना, स्नान करना, एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे मैं जब स्नान करता हूँ उस समय भी मैं योग करता हूँ और मैं जैसे बाबा के, ब्रह्मा बाबा के सामने ही बैठी थी और मुरली चल रही थी, तो बाबा ने कहा मैं जब स्नान करता हूँ तो मैं क्या सोचकर स्नान करता हूँ, उस समय भी मैं बाबा को याद करता हूँ। तो मन में संकल्प आया कि अरे ऐसे समय में भी भगवान को, बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि देखो बच्चे, जैसे कोई साहूकार होता है, साहूकार जब तैयार होकर के घर से निकलेगा और अपनी गाड़ी में बैठेगा और उसको जहां जाना होगा जाएगा, तो मैं उसकी गाड़ी को साफ करता हूं। मेरी बुद्धि में ये नहीं आता कि मैं शरीर को साफ कर रहा हूं, मेरा सेठ कौन है, शिव बाबा मालिक है, और वो अभी हमारे तन में प्रवेश होगा, आएगा, इस गाड़ी में बैठेगा, तो अगर मैं गाड़ी को साफ सुथरा न करूं तो मालिक कैसे आकर बैठेगा। तो इस भांति से मैं बाबा को याद करता हूं और हर समय जैसे बाबा हमारे साथ है ये अनुभव करता हूं। और वो दिन और आज का दिन, भले उस समय मैं छोटी थी लेकिन मुझे पूरी स्मृति में है कि देखो बाबा किस तरह से पुरुषार्थ करता था और सदा ही याद में रहने का प्रयत्न करता था, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। ये सोच कितनी ऊंची है, ये तन मेरा नहीं है, मैंने तो ये तन बाबा को दे दिया है, बाबा को समर्पित कर दिया है, अब इसका मालिक स्वयं बाबा है। तो वो जैसे एकदम दिल को ये बात छू गई और हमारा भी यही पुरुषार्थ रहा कि मैं अपने आप को योग युक्त बनाऊं। कभी दर्पण के सामने भी खड़े होते तो जैसे बहनें सभी को दृष्टि देती थीं, दृष्टि का आदान प्रदान विशेष पहले योग में रहता था, अभी भी है लेकिन अभी कुछ कमी आ गई है, तो दर्पण में भी मैं अपने आप को देखती थी मैं आत्मा हूं। और भले एक मिनट हो दो मिनट हो, आत्मा का ये अभ्यास जिस समय उस रूम में कोई नहीं होता तो ऐसा भी मैं प्रयास करती थी अभ्यास करती थी अपने आप को आत्मा समझने का। तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर योग का विशेष महत्व है, क्योंकि योग के माध्यम से ही हम अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है कि बच्चे आपको कर्मातीत बनना है, उस अवस्था को पा सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है तो हम बाप समान बन सकते हैं, बाबा के उन गुणों को, उन विशेषताओं को, कर्तव्यों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति का भी हम समाधान कर सकते हैं, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। योग में इतनी ताकत है तो हम योग को अपना पहला विषय अगर बना लें तो हमारे में बहुत इन सब चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करना, अपनी धारणाओं को विशेष बनाना, अपने अंदर शक्तियों को ऑब्जर्व करना, वो स्वतः हो जाएगा। हम कहते हैं योग के द्वारा शांति प्राप्त होती है। औरों को हम बताते हैं ना, आप राजयोग का अभ्यास कीजिए और अपने जीवन में सुख शांति को पाइए। तो हमारे अंदर भी शांति की वो शक्ति कैसे आएगी? योग ही एकमात्र आधार है ज्ञान समझ है, ज्ञान के आधार से हम हर बातों को समझते हैं, लेकिन योग के द्वारा वो हमारी स्थिति बनती जाती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति की मूर्ति हूं, अपना जो चेहरा है वो इतना शांत में बन जाए, जो दूसरे भी ये अनुभव करें कि इनके मन में कितनी शांति है। शांति चेहरे से दिखाई दे, ज्ञान तो जब वर्णन करेंगे तो लोग समझेंगे, लेकिन योग चेहरे से झलकेगा। हमने जो धारणा की है, बाबा ने जो भी हमारे को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाएं जो भी बताए हैं, वो सब धारणा स्वरूप में दिखाई देगा, और वही धारणा हमारा शक्ति का स्वरूप बनता जाएगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को सदा ये कहते हैं, बच्चे योग युक्त, ज्ञान युक्त, राजयुक्त, राजयोगी, प्रयोगी, ये सब आपके चेहरे से, चाल चलन से दिखाई दे। चेहरे से भी हमारी धारणा दिखाई देती है। इसमें जब हम सभी आते थे मधुवन, मैंने बड़ी दीदी जी, जो मनमोहिनी दीदी जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, कईयों ने देखा भी होगा, तो उनकी परख शक्ति इतनी तीव्र थी, तुरंत पहचान जाती थी। उस समय एक नियम था, माना नियम तो आज भी है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेशन रूप में था, कि कम से कम 6 मास धारणा युक्त होकर के मधुवन आ सकते हैं। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, खान पान की शुद्धि और सब जो भी धारणाएं, सेवाएं, वर्तमान तो 1 वर्ष का सारा नियम है, प्रतिदिन क्लास करते हूँ, मुरली सुनते हूँ, ये सब। लेकिन जब एक एक पार्टी सब बैठते थे पांडव भवन में, उस समय तो पार्टियां छोटी छोटी ही आती थी, तो पांडव भवन में जो अभी हिस्ट्री हॉल है, तो उसी क्लासरूम में सभी बैठते थे और मिलते थे, तो बाबा तो मिलते ही थे, फिर बाद में दीदी दादियां भी मिलती थी। तो बड़ी दीदी जी हरेक को दृष्टि देकर के, फिर एक एक से जब मिलती थी, तुरंत मतलब पहचान जाती थी और पूछ लेती थी, कितने समय से धारणा में चल रहे हो। अगर किसी ने कहा 6 मास से, क्योंकि 6 मास का नियम था, ज्ञान में कब से चल रहे हो, अगर वो कहेंगे साढ़े छह मास से, सात मास से, क्या इतनी जल्दी धारणा में आ गए? फिर दीदी टीचर से भी पूछ लेती थी, बहनों से भी पूछ लेती थी, कितने समय से आते हैं, सच्ची सच्ची बताना। तो कई बार ऐसा भी होता है, थोड़ा हेरा फेरी कर लेते हैं, तीन मास से धारणा में होंगे और बहन जी को भी कह देंगे नहीं हम छह मास से धारणा में है। लेकिन बड़ी दीदी जी की आंख नेत्र माना तीसरा नेत्र इतना तेज था, इतना प्रखर था, जो वो पहचान जाती थी और प्रश्न करती थी कैसे आए। चलो अभी माफ है, फिर जब आना पूरा पक्का धारणा युक्त तो होकर के आना। थोड़ा भी हेरा फेरी पसंद नहीं था। जैसे कहते हैं एक साधु मंडली में एक चोर भी सत्संग कर करके साधु मंडली में मिक्स हो गया। रात को जब सभी सो जाते थे तो थोड़ा तो उसका चोरी का संस्कार था ना, तो उसके कारण वो क्या करता था, चोरी तो कर नहीं सकता लेकिन इसका कमंडल उसके पास, उसका कमंडल उसके पास, वो लोग जो काठ का लोटा जैसा लेकर के घूमते हैं वो कमंडल इधर उधर कर देता। सुबह जब उठते सभी साधु लोग देखते, अरे हमारा कमंडल कहाँ गया कहाँ गया। फिर एक दूसरे से मिलान करते तो फिर आपस में बांट लेते थे कि मेरा ये कमंडल है। एक दिन की बात है, एक साधु के मन में आया कि आखिर ऐसा होता क्यों है, थोड़ा पता लगाए। तब फिर उन्होंने देखा कि जो चोर स्वभाव का व्यक्ति था, जो साधु नया नया ही साधु बना था, तो वो ये कार्य करता है, इसका कमंडल उसके पास, उसका कमंडल उसके पास। तो इसको क्या कहेंगे, ये चोरी नहीं लेकिन हेरा फेरी, इधर का उधर, इधर का उधर। तो इस तरह से माना हमारे अंदर भी बाबा कहते हैं योग की शक्ति के आधार से हमारी सच्चाई की जो वृत्ति है वो भी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। बाबा के सामने कभी भी हमारे से झूठ न निकले, सदा ही हम सच्चाई को अपना साथी बनाकर रखें। और जितना जितना हम सच्चाई में रहते हैं उतना ही बाबा हमारी हर मुराद पूरी करता है। कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहब राजी। हम भगवान के आगे जितना सच्चे रहेंगे उतना भगवान भी हमारे ऊपर राजी रहेगा। हमारे को हर प्रकार से भरपूर करेगा और इतना भरपूर करेगा जो हमें फिर झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम भरपूर हो गए तो फिर बाहर निकलने का प्रश्न ही नहीं है ना। आधा भरा हुआ घड़ा वो छलकता है, लेकिन जो घड़ा भरा हुआ होता है वो छलकता नहीं है। बिहारी भाषा में ये एक मुहावरा है, अध जल गगरी छलकत जाए। आधा जो होता है वो छलकता है, माना उसका पानी हिल हिल करके बाहर आता है, लेकिन जो भरपूर होता है उसका पानी ज्यादा टपकता नहीं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी याद से अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें, इतना ताकतवर बना लें, जो आने वाली हर परिस्थितियों का अच्छी तरह से वो सामना कर सके। क्योंकि पहले एक पारिवारिक परिस्थिति आती थी, घरेलू परिस्थिति आती थी, सामाजिक परिस्थिति आती थी, पहले की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज जिस तरह से हम पांचों ही तत्व की अनेक प्रकार की परिस्थितियां देख रहे हैं, तो उसमें अगर हमारी आत्मिक स्थिति पावरफुल नहीं होगी तो हम फेल हो जाएंगे। एक बार की बात है, माना आत्मिक स्थिति के ऊपर ही ये बात है कि कहीं बाढ़ आई, फ्लड आया, तो इतनी बाढ़ आ गई जो घरों में भी पानी घुस गए। जब पानी घुस गया तो पानी में भी बिच्छू सांप ये सब भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एक भाई अपने चौकी पर बैठा हुआ था, वो चौकी भी पानी इतना भर गया है, वो चौकी भी पानी में हिलने लगा, वो तो जरूर होगा ही। और हिलते हिलते उस पर अचानक उसने देखा एक काला सांप चौकी के साइड में आकर के बैठ गया है, एक कोने में बैठ गया है, एक तरफ वो एक तरफ। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या सोचते हैं, हम योग लगाएं, बाबा को याद करें, और बाबा को जब हम याद करेंगे तो हमारा जो डर है, हमारा जो भय है, वो सब दूर हो जाएगा और हो सकता है पानी भी कम हो जाए। लेकिन वो तो योग लगा रहा है, लेकिन बीच में ये एक और जो परिस्थिति आ गई, सांप जी आकर के बैठ गए। अब उस समय उसने ये विचार करना शुरू किया, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आप मुझे नहीं काटना, आप जाओ, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अब इस तरह से वो अपने अंतर मन में ये बड़बड़ बड़बड़ करने लगा। खैर जो भी है, बाबा का बच्चा है तो बाबा तो उसकी भी आश पूरी करेगा ही। वो सांप धीरे से उसकी चौकी से रेंगते हुए उतर करके पानी में चला गया। तब वो एक लंबी सांस लेकर के कहता है, जाओ, जो भी हो बाबा ने हमारी सुन ली, मैं सचमुच में आत्मा हूं, तो इतना दिन क्या कर रहे थे? इतना दिन जो ज्ञान में चल रहे थे और रोज योग लगा रहे थे, रोज आत्मा का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उस समय हमें ये अनुभव हुआ, माना उस व्यक्ति को अनुभव हुआ कि नहीं, सचमुच में मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं कि जो भी परिस्थितियां आएंगी, अगर लंबे काल का अभ्यास हमारा आत्म स्वरूप का होगा, याद की स्थिति हमारे लंबे काल तक के अभ्यास के रूप में होगी, तभी हम हर परिस्थितियों को पार कर सकेंगे। अगर उस समय हम आत्मा आत्मा का अभ्यास करेंगे तो क्या उस समय हमारी आत्मिक स्थिति होगी? हम तो खुद ही डर से थरथराने लगेंगे, कांपने लगेंगे, वो परिस्थिति सामने आए और हम घबरा करके गिर जाएं, बेहोश हो जाएं। नहीं, बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और उसके लिए बाबा ने याद को पावरफुल बनाने के लिए जो भी समय दिए हैं, जो भी टाइम दिया है, उसको अपनी बुद्धि में सदा रखना है, ध्यान रखना है। बाबा ने तो एक बार मुरली में कितना कॉन्सेशन दे दिया, बच्चे 8 घंटा अगर याद नहीं कर सकते हो तो कम से कम 4 घंटा तो याद करो, याद है? माना इतना 4 घंटे का भी कॉन्सेशन बाबा ने दिया। अमृत वेला, फिर बाद में जो भी हमें समय मिलता है उसमें शाम का नुमा शाम में भी जो हम 1 घंटा योग करते हैं, रात्रि को योग करते हैं, सोने के समय पावरफुल योग करके बाबा को सब अपना पोता मेल दे करके सोते हैं, अगर उसको भी हम कंप्लीटली ठीक रीति से हम ध्यान में रख करके अगर हम वो अभ्यास करते रहते हैं तो हमारा तो वैसे 4 घंटा हो ही जाएगा। और इसीलिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का ये अभ्यास हम बच्चों को कराया। ट्रैफिक कंट्रोल हमारा कितने बजे से कितने बजे? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल सुबह कितने बजे? 4:30, 3:30, फिर 4:45, फिर 4:30, ट्रैफिक कंट्रोल हमारा सुबह 7 बजे, मुरली के बीच में या मुरली से पहले 7 बजे का जो हम योग करते हैं 3 मिनट, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, वो ट्रैफिक कंट्रोल का समय। उसके बाद 10:30 बजे, यहां सभी करते हैं ना, जो जहां रहते हैं वहां खड़े हो जाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो 10:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, 5:30 बजे, फिर 5:30 बजे के बाद 7:30 बजे, और फिर 9:30 बजे। ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल, अगर इसको भी तीन तीन मिनट का हम पूरा अटेंशन रखेंगे तो कितना टाइम हमारा योग में जाएगा? वो तो बाबा से पर्सनल मिलने का समय, शाम को जो हम 6:30 से 7:30 योग करते हैं वो भी हमारा सेवा का समय, बाबा से भी पर्सनल मिलते हैं और सेवा नुमा शाम के अंदर बाबा कहता है मन बुद्धि के प्लेन पर बैठ करके आप सब जगह चक्कर लगाओ। इसलिए लौकिक घरों में क्या है, शाम के समय संध्या लगाते हैं, दीप लगाते हैं, दीप लगाते हैं, वस्त्र चेंज करके दीप लगाते हैं, सारे घर में उसका हवा देते हैं और ये सोचते हैं कि रात को देवताएं चक्कर लगाएं। तो हम ही सब तो होवनहार देवी देवताएं हैं और हम इस तरह से शाम के समय चक्कर लगाएं। तो अगर ये ट्रैफिक कंट्रोल भी हमारी बुद्धि में रहता है तो जैसे समय प्रति समय किसी भी बीमारी होने के समय हम दवाई खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कैसे टाइम याद आ जाता है? डॉक्टर ने कहा है इतने बजे ये दवाई लेना है तो कैसे स्मृति में आ जाती है? स्मृति में इसलिए आती है कि डॉक्टर ने कहा है, इसलिए डॉक्टर की बात ज्यादा बुद्धि में घुस जाती है और वो स्मृति में आ जाती है। बाबा ने हमें ये टाइम दिया है, भगवान का दिया हुआ टाइम है। भगवान हम बच्चों की स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए चाहता है, हमारे बच्चे सदा आने वाली जो परिस्थितियां हैं, आने वाला जो समय है उसमें वो मजबूत से मजबूत बने, स्ट्रांग से स्ट्रांग बने। बार बार बाबा हमें स्मृति दिलाता है। तो मन बुद्धि के साथ हमारी स्मृति जितनी डीप होगी उतना ऑटोमेटिक हमें ख्याल आ जाएगा मुझे बाबा को याद करना है, मुझे अपनी आत्मिक स्थिति का मीटर देखना है। इतना बाबा से हमारा प्यार हो, इतना बाबा से हमारा स्नेह हो जो हर समय उसकी स्मृति में हम खोए रहे। एक बार बताते हैं कि अकबर जी वो नमाज पढ़ रहे थे तो मुस्लिम लोग जैसे वो चादर बिछा करके उस पर बैठते हैं ना, नमाज पढ़ रहे थे तो अचानक एक बूढ़ी माता दौड़ती हुई आई और उनके चंदर पर थोड़ा पैर डालती हुई दौड़ती हुई आगे निकल गई। उनको बड़ा अंदर से गुस्सा आवेश सा आया, अरे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और ये बूढ़ी औरत चादर के ऊपर पैर डालते हुए चली गई। उसको बुलाया गया, पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं चादर के ऊपर, आपके बिछाए हुए चादर के ऊपर मैं पैर डाल करके चली गई? तो इसका मतलब था कि आप अल्लाह को याद नहीं कर रहे थे। मेरा पति बूढ़ा गुम हो गया है और मैं उसको खोजते हुए दौड़ती हुई जा रही हूँ, कहाँ गुम हो गया है? मुझे इतना नहीं पता कि आप यहाँ बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं और मेरा पैर थोड़ा चादर पर चला गया। मुझे मालूम नहीं पड़ा, एक व्यक्ति के लिए, वो भी मेरा पति एक व्यक्ति है, उसके लिए मैं उसके स्नेह में दौड़ती हुई भाग रही हूँ और आपको मालूम पड़ गया, और आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे। तो अकबर जी को बड़ा ही थोड़ा शर्मसार महसूस हुआ, बोला ठीक है जाओ। बाबा से हमारा इतना प्यार, आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, बच्चे याद करो और मुझे प्यार करो, ये कहा ना आज बाबा ने, मुझे प्यार करो, और जिसको हम प्यार करेंगे तो वो तो हमारे दिल में समाया हुआ होगा ना, हर समय किसकी स्मृति रहेगी, हर समय किसका याद रहेगा। हम जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, जो भी पहनेंगे, जो भी कार्य करेंगे, बुद्धि में बाबा आएगा। एक माँ कोई अच्छी चीज बनाती है खाने की, मिठाई वगैरह बनाए या खीर बनाए या कुछ भी बनाए, उसके मन में तुरंत आ जाता है, उसका जिस बेटे से संबंध ज्यादा होता है, ज्यादा प्यार होता है, तो वो उसको याद करती, ऑटोमेटिक याद आ जाती, मेरा बेटा होता है कि बेटी होती तो वो खाती, नहीं तो उसके लिए पहले वो निकाल देगी, अगर दूर है या आने में देरी है, निकाल करके रख देगी फिर खाएगी। हमारा भी बाबा से इतना प्यार, कई बार ऐसा होता है, अरे एक साल तो मधुबन होकर के आ गए, हर साल जाने की क्या जरूरत है, ऐसा कोई समझते हैं? हम लोग तो हर तीसरे मास आते हैं, हर छठे मास आते हैं, साल की तो बात ही छोड़ो। जिस बाबा को हमने अपना बनाया, कई चित्रों में आपने देखा होगा, कोई बच्चा शिव जी को ऐसे बाहों में लिया हुआ है, बांधा हुआ है, कितना प्यार कर रहा है। आज भगवान ने खुद कहा, बच्चे मुझे प्यार करो, याद भी करो और प्यार भी करो, याद करो अपनी आत्मिक स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, और प्यार करो हर कारोबार को ठीक से चलाने के लिए, चाहे घर का हो, चाहे सेवा केंद्र का हो, चाहे ईश्वरीय सेवा का हो, चाहे जो भी हो, अगर बाबा से प्यार है तो कभी भी हमारा मन कुंठित नहीं होगा। हर वर्ष हम बाबा के घर में आए और बाबा को इन आंखों से हम देखें, कितना सौभाग्य है हमारा। मुझे वो दृश्य बहुत अच्छा लगता है, जब बाबा को लास्ट में भोग खिलाते हैं, ऐसा लगता है कि आज बाबा हमारा भोग स्वीकार कर रहा है। मंदिर में भगवान भोग नहीं खाता है, लेकिन आज हम इन आंखों से ये देख रहे हैं कि भगवान भोग खा रहा है, सभी बच्चों को खिला रहा है, और भी जो भी बच्चे हैं खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बाबा से कितना भी, बाबा भी बच्चों से इतना प्यार कर रहा है, बच्चे भी बाबा से कितना प्यार कर रहे हैं। तो इतना बाबा के साथ हमारा स्नेह सुदृढ़ हो जाए, रहे हर बात में बाबा, हर कर्म में बाबा। मैं निर्मल शांता दीदी, जो ब्रह्मा बाबा की सुपुत्री थी और यहाँ पर भी काफी टाइम रही, उनके साथ भी मुझे रहने का मौका मिला। अगर कहीं से भी किसी ने फल भेजा या सब्जी भेजी या कोई भी ऐसा वस्तु सामान भेजा, तो दीदी हमेशा ये पूछती थी, बाबा को खिलाया? बाबा को दिया? कोई फल ले आया, आप लोग इतनी सेवा करते हैं, हमारा तो बना हुआ आप खाएंगे नहीं, हम ये फल लेके आए हैं, आप लोग खाइए। दीदी कहेंगी पहले बाबा को भोग लगाओ, क्योंकि वो व्यक्ति जो लाया है किस संकल्प से लाया है, जिन्होंने हमारी सेवा की है उनके लिए। तो व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति स्नेह रहा। आपने घंटा घंटा हमें समझाया, कोर्स कराया, ये वो जो भी, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ जानी है? हम बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा उसे स्वीकार करेगा, और फिर जब हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी। तो बाबा से इतना प्यार, घर में जो भी चीज आया बाबा को स्वीकार करो, बाबा को भोग लगाओ, उसके बाद ये करना। अगर लौकिक में भी हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई केला ले आया, हम फट से निकाल के उसको खोल करके खाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को देना शुरू कर देते हैं, उसमें बाबा याद रहता है? प्रैक्टिकल अनुभव के अंदर देखिए, बाबा याद रहता है? नहीं, हमारे लिए आया है, इसने लाया है, चलो उसको स्वीकार करो। तो कहने का भाव ये है कि बाबा के साथ हम प्यार करें, इतना प्यार हो हमारा जो भी कुछ है बाबा का। शरीर बाबा का, मन बाबा का, बुद्धि बाबा का, घर में जो भी चीजें आती हैं, जो है सब बाबा का। अगर बाबा को हमने अर्पित कर दिया है तो वो बाबा का है और बाबा की अमानत है, वो मेरा नहीं। अमानत को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा जाता है। अपनी चीजों को तो थोड़ा डोंट केयर भी कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छी कोई भी चीज हमें संभालने के लिए दी हो, इतना दिन आपके घर में हम छोड़ते हैं, आने के बाद लेंगे, तो हम क्या सोचते हैं, ये दूसरे की चीज है, उसको संभाल करके रखना है। तो ऐसे ही हमारे पास बाबा की अमानत सब कुछ है, तो हमें उसकी संभाल भी कितनी अच्छी तरह से करनी है। बाबा से इतना प्यार, जो सब कुछ बाबा का और बाबा की ही अमानत, और उसको हमें संभाल कर रखना है। इसलिए बाबा कई बार हमें ये कहता है, बच्चे आपका ये जो शरीर है बहुत वैल्यूबल है, आप कभी ये ना समझो कि मैं बीमार हूँ, मैं रोगग्रस्त हूँ, मेरे को बीमारी ने ग्रस्त कर लिया है, इससे तो अच्छा ये शरीर छूट जाए, मैं मर जाऊं। कई बार ऐसे संकल्प आ जाते हैं ना, बीमारियों के कारण या शारीरिक व्याधि के कारण, किसी भी कारण से। तो बाबा हमको कितनी अच्छी बात बताता है, बच्चे कभी भी ये नहीं सोचो कि मुझे मर जाना है। बाबा ने ये शरीर दिया है ईश्वरीय सेवा करने के लिए, और इस शरीर में जब हम रहेंगे तभी पुरुषार्थ कर सकेंगे। और अगर शरीर छोड़ दिया, दूसरा लेंगे, तो और पुरुषार्थ करने का भी चांस नहीं रहेगा। फिर बड़े होंगे, कब ज्ञान सुनेंगे समझेंगे, तब जाकर के कुछ होगा। तो हमारी सोच को बाबा कितना सुंदर बना देता है। बच्चे कभी भी ऐसा संकल्प नहीं करना है, सदा ही दूसरों को सेवा करके अपने कर्म को श्रेष्ठ बना लेना है। आज दादी जानकी हैं, इतना वर्ष की हो गई, हम सब ने धूमधाम से कार्यक्रम किए जो भी, लेकिन आयु की बात नहीं है, उनके द्वारा कितनी सेवा हुई और हो रही है। दादी नाश्ता भी करती हैं तो पहले किसी को भी ज्ञान सुना करके, मुरली भी सुनाती हैं, फिर भी उनके आंतरिक इच्छा ये रहती है नाश्ता करने से पहले भी मैं किसी को बाबा का परिचय दूं, बाबा का ज्ञान बताऊं, दो बात सुना करके मैं खाऊं। कितना बाबा से प्यार है, एकदम जैसे बाबा जिगर में बैठ गया है। तो ऐसे ही हम सभी को बाबा के प्रति इतना स्नेह, इतना जिगरी प्यार हो, जो ना हम बाबा से छूटे ना बाबा हमारे से छूटे। बाबा का हाथ और साथ सदा ही हमारे हो, बाबा के हाथ में सदा हमारा हाथ लगा हुआ हो, बाबा हमारा हाथ पकड़ा रहे तो वो कभी भी छूटेगा नहीं। हम छोड़कर कूदने फांदने लगे ऐसा नहीं, पूरा ही बाबा को अपना हाथ सौंप दिया, माना मैं बाबा का। तो इतना जिगरी प्यार, बाबा को हम प्यार करें, हर प्रकार से बाबा से स्नेह रखें, बाबा को अपने दिल में बिठा करके रखें, अपने नैनों में रखें, नैनों में बाबा को हम समा करके रखें, तो फिर कौन दिखाई देगा? बाबा ही दिखाई देगा, बाबा के बच्चे ही दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम सभी को समय प्रमाण अपनी याद की अवस्था को भी बहुत पावरफुल बनाना है, अपनी स्थिति बहुत ऊंची बनानी है, और बाबा के प्यार में इस तरह से रम जाना है लैला मजनू की तरह कहें, या एक इतना बाबा के प्यार में हम सब डूब जाएं, जो डूब कर बाबा से उन रत्नों को, उन शक्तियों को, उन गुणों को हम ऑटोमेटिक ग्रास करते रहें, अपने अंदर भरते जाएं, और अपने आप को सद्गुणों से भरकर, गुणों से भरकर, शक्तियों से भरकर एक विशेष आत्मा इस संसार के अंदर, इस विश्व के शोकेस में हम सभी परिणत हो जाएं, ये बाबा की बहुत ऊंची इच्छा भी है और हम सभी का भी बहुत ऊंचा ये संकल्प भी है। अच्छा, ओम शांति।
जीवन में